ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तीन दिन से मेडिटेशन सीख रहे हैं, राजयोग कर रहे हैं, मन की शांति अनुभव हो रहा है, शक्तियों का एहसास हो रहा है, थोड़ा बहुत है ना, करते करते और ज्यादा महसूस होने लगता है, अनुभव होने लगेगा। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मेडिटेशन करने से हमें प्राप्तियां क्या क्या होने वाली हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से मेडिटेशन करते हैं। कोई मेडिटेशन करते हैं अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, हेल्थ को ठीक करने के लिए, कोई मेडिटेशन करते हैं अपने प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, कोई मेडिटेशन करते हैं अपने संबंधों को ठीक करने के लिए, अलग अलग जो इच्छाएं होती है, जो मनोकामनाएं होती है, तो उनको पूर्ण करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है। लेकिन अल्टीमेट जो एम है मेडिटेशन का, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेडिटेशन है और डिवोशन है, मतलब भक्ति, उसमें बहुत अंतर है। मेडिटेशन में टू वे कम्युनिकेशन है ना, हम भी परमात्मा से बात करते हैं, परमात्मा के जो भी बात है तो हमें महसूस होता है। जो भक्ति में क्या होता है, केवल एक तरफा होता है, हम ही हम कहते रहेंगे, तो वहां से जो आने वाले सिग्नल्स हैं उनको महसूस करने के लिए हम रुकते नहीं है, क्योंकि जब हम रुकेंगे तभी तो सामने वाले जो कहने वाले हैं तो उसको हम सुन सकते हैं। हम ही हम कहते जाएंगे तो सुनने के लिए हम हमारे पास नहीं होता। तो ये मेडिटेशन करने का मुख्य लक्ष्य क्या है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से बहुत बड़ा प्राप्ति होता है। वो अल्टीमेट जो एम है वो है संस्कारों में परिवर्तन। कि मन की शांति तो तुरंत मिल जाता है, हमने थोड़ा बेचैन है, एंजाइटी है, टेंशन है, तो आधा घंटा थोड़ा मेडिटेशन कर लिया तो वहां थोड़ा मन कंट्रोल में आ गया। लेकिन क्या वो नेचुरल बना? कर्म करते समय भी कुछ भी परिस्थितियां आए, कुछ भी ऐसे समस्याएं आए, लेकिन उन समस्याओं के दौरान, उन परिस्थितियों के दौरान मेरे मनोस्थिति कैसा रहा? फिर से मैं टेंशन में आ गई या फिर वहां स्टेबल रहा? तो ये जो नेचुरल हो जाए, जो शांति की शक्ति अपने संस्कारों में, अपने कर्मों में आ जाए, ये है लक्ष्य मेडिटेशन का, है ना। तो मेडिटेशन के द्वारा मन की शक्ति तो बढ़ता ही है, लेकिन मन की शक्ति बढ़ने के कारण से जो भी हम सोचते हैं उसकी सिद्धियां तो होती, लेकिन फिर लॉन्ग रन में, लंबे काल के लिए हमारी प्राप्ति है शक्तियों की। क्योंकि मन की अगर शांति चाहिए तो हर एक को चाहिए मन की शांति। ऐसा कोई है इस हॉल में जो कहे सुख शांति नहीं चाहिए जीवन में? हर एक को चाहिए सुख शांति, राइट? कोई ये नहीं कहता दुख और अशांति चाहिए, है ना। हर एक को सुख शांति चाहिए, लेकिन क्या मेडिटेशन करने से सुख शांति की अनुभूति होगी? होगी होगी, क्या कहेंगे आप? होगी, लेकिन वो बाय प्रोडक्ट है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो हेल्दी रहने के लिए क्या करना होगा, अपने रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाना होगा। इम्यूनिटी पावर जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएंगे। तो हेल्दी होना एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन फिर प्रोसेस क्या है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना। तो ऐसे ही मेडिटेशन करने से सुख शांति होगी, लेकिन इम्यूनिटी पावर क्या है, वो ताकत क्या है, ये है शक्तियां। जब शक्तियों के बिना आपको सुख शांति जीवन में अनुभव हो नहीं सकता। क्या आपके अंदर अगर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो सुख शांति होगी? छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो सुख शांति होगी नहीं होगी। अगर सहन करने की शक्ति नहीं है, छोटी छोटी बातों में मैं रो पड़ रही हूँ, छोटी छोटी बातों में परेशान हो रही हूँ, टेंशन में आ रही हूँ, वहां टॉलरेंस पावर नहीं है, सहन करने की शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, क्या सुख शांति होगी? नहीं होगी, है ना। ये जब शक्तियां आएंगी अपने अंदर, ऑटोमेटिकली सारी चीजें और आती जाएगी। सो मेडिटेशन से कौन सी ऐसे अष्ट शक्तियां हैं, जैसे देवियों की पूजा करते हैं हिंदू धर्म में, और नवरात्रि के दिनों में खास देवियों की पूजा करते और देवियों को अष्ट भुजाएं दिखाते हैं, और एक एक भुजा में एक एक शस्त्र। जब भी ताकत, जब युद्ध करने जाना होता है तो पूजा दुर्गे की पूजा करते हैं, है ना, ताकत चाहिए होता है। तो ताकत केवल फिजिकल ताकत की बात नहीं है, लेकिन मेंटल पावर भी चाहिए, और जैन वो तो युद्ध के लिए है, लेकिन लाइफ में हर रोज के लिए ये अष्ट शक्तियों की जरूरत है। और ये शस्त्र जब आप समझ जाएंगे कौन कौन से शस्त्र है अपने पास, तो फिर उसको यूज करना हम सीख जाएंगे। शस्त्र है हर एक के पास, हर एक के पास ये अष्ट शक्तियां हैं, लेकिन उनको समझना है। जैसे शस्त्र है लेकिन उसको चलाना अगर नहीं आता है, गन है मेरे पास लेकिन उसको अगर चलाना नहीं आया, तो होते हुए भी मैं उसको यूज नहीं कर पाती हूँ, है ना। तो ऐसे इन देवियों ने जब भी इन शस्त्रों का प्रयोग किया, असुर संहार के लिए उन्होंने उसका प्रयोग किया। असुर कहाँ है? असुर कोई दुश्मन है? वो तो अलग बात है, लेकिन जीवन में अपना दुश्मन अपने ही अंदर छिपे हुए अपनी कमी कमजोरियां है, उन भूतों को, उन डेमन्स को हमें भस्म करने की जरूरत है। वो है असुर अपने अंदर। उन असुरों को संहार करने के लिए इन अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। और ये अष्ट शक्तियां कौन कौन सी हैं? इस चित्र में दिखाया गया है, विस्तार से, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, संयोग की शक्ति और सामना करने की शक्ति। ये अष्ट शक्तियां हैं। तो एक एक करके हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति या पावर टू विड्रॉ। इस चित्र में हम कछुआ देख रहे हैं। कछुए की विशेषता क्या है? जब भी, जब चाहे अपने कर्म इंद्रियों को अंदर ले सकता है, तो जब चाहे उसको बाहर कर सकता है। जब अंदर लेता है तो उसका ऊपर का शेल बहुत सख्त होने के कारण से वो सुरक्षित महसूस करता है, है ना। उसके ऊपर कुछ भी पत्थर फेंके या खुद भी जाकर के उसके ऊपर कूदे, कुछ नहीं होता। भले वो शरीर सॉफ्ट है लेकिन शेल हार्ड होने के कारण से वो एकदम सुरक्षित महसूस करता है। उसको पता है मेरा जो शेल है वो हार्ड है या अंदर मैं सुरक्षित हूं। तो अपने पास भी ऐसे सुरक्षित जगह है। जब भी हमें डर लगे, जब भी हम असुरक्षित महसूस करें, हम अपने ही कर्मेंद्रियों को विड्रॉ करते हुए वहां हम सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। पता है कौन सा है, कौन सी जगह है आपके पास, कौन सा है कौन सी ऐसी जगह है जो सुरक्षित रह सकते? फिजिकली की बात नहीं है, फिजिकली तो अलग बात है, लेकिन मेंटली और स्पिरिचुअली जो अगर सुरक्षित रहना है तो वो है आत्मिक स्मृति। क्योंकि हमें पता है मैं आत्मा अनादि अविनाशी हूं, उसका कोई मृत्यु है ही नहीं, है ना। कुछ भी अभी परेशानी आए, कुछ भी समस्या आए, जब हम अपने आप को विड्रॉ करते हुए महसूस करना शुरू किया कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। क्योंकि असली ताकत जो है आत्मा से आती है, आत्मा एनर्जी है ना। तो आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही वो ऊर्जा, वो एनर्जी बढ़ना शुरू होता है, तो सोल कॉन्शियसनेस। ये जब जितना हम अभ्यास करते हैं, आप देखेंगे आपके लाइफ में समस्याएं कम होती हुई नजर आएंगी और क्षमता बढ़ता जाएगा। क्योंकि जब जब समस्याएं आए, चाहे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो या कोई और जीवन में समस्या आए, उसका जड़ है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह भान। देह भान माना देह भान आते ही देह अहंकार आ जाता है, मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं बहुत ऐसा हूं वैसा हूं। जो अहंकार आ गया, तो अहंकार आते ही जो आत्मा में क्षमताएं हैं उसको 100% हम यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए बार बार जब हम ये महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं कि मैं आत्मा एक एनर्जी हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति का भंडार हूँ, तो आप देखेंगे आप अपने कैपेसिटी बढ़ता जाएगा। जैसे एक सागर में जब भी तूफान आता है, चाहे सागर में या फिर भूमि पर, जब हुरकेन आता है ना, जब तूफान आता है, तो उसको मूवमेंट कैसा होता है, एक स्पाइरल मूवमेंट होता है, ऐसे करते करते होते 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 वो आगे जाता है, राइट। सागर में भी जब वो तूफान आता है, स्पाइरल मूवमेंट, ऐसे करते 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 आगे जाएगा। शिप अगर उस चपेट में आ गया, उस तूफान के चपेट में आ गया, तो क्या होगा, वो डूबना निश्चित हो जाएगा। लेकिन अगर वो कैप्टन उस तूफान से बाहर आने की कोशिश करता है, डूबना निश्चित है। लेकिन उसके अंदर जाने की कोशिश करेगा, जाना मुश्किल है, लेकिन अगर एक बार वो पहुंच गया ना बीच में, एकदम सुरक्षित है। पता है क्यों? क्यों सुरक्षित है एकदम बीच में? एकदम बीच में सुरक्षित क्यों है? जाना मुश्किल है वहां, लेकिन एकदम सुरक्षित क्यों है? क्योंकि वहां एकदम शांति है बीच में। उसको कहा जाता है आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान की आंख कहते हैं, है ना। तो वो एकदम शांति है वहां और चारों तरफ तूफान है, है ना। अगर शिप वहां पहुंच गया ना, भले चारों तरफ तूफान है, लेकिन शिप तो सुरक्षित है। ऐसे ही अपने जीवन में भी चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, तूफान है, तूफान है, समस्याएं, परिस्थितियां, परेशानियां, ये वो है, टेंशन्स, बहुत सारी बातें हैं लाइफ के, है ना, बहुत सारे बातों का तूफान चल रहा है। अगर उसके चपेट में आ गए ना, ये परेशानी, वो परेशानी, ये क्या करें, वो करें, तो फिर उसमें एनर्जी और ही ड्रेन आउट हो जाएगा। उसके बजाय क्या करना है, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए क्या करना होगा, उसके आई ऑफ द स्टॉर्म में जाना होगा। आई ऑफ द स्टॉर्म क्या है, आत्मिक स्थिति। भले परिस्थितियां हैं, लेकिन जब मैं अपने आप के साथ वार्तालाप करती हूँ, अपने आप के साथ मुलाकात करती हूँ, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ती हूँ, वो आत्मा फिर से एनर्जाइज हो जाती है, फिर से उन तूफानों से लड़ने की ताकत अंदर आ जाती है। तो इसलिए बार बार अपने आप को विड्रॉ करके उस सुरक्षित जगह पर पहुंचने की प्रैक्टिस बार बार करने की जरूरत है। और दूसरी शक्ति है पावर टू पैक अप, समेटने की शक्ति, है ना। इस चित्र में दिखाया है एक ट्रैवलर, एक यात्री सूटकेस लेके जा रहा है। जीवन भी एक यात्रा है, है ना। जब भी वो स्थूल यात्रा, इस यात्रा में जाते हैं, आप भी यात्रा करके आए, दूर दूर से अलग अलग जगह से यात्रा करके आए, ट्रैवल करके आए, तो आप भी अपना लगेज लेके आए हैं। तो लगेज कैसा है, कितने लगेज लेके आए, 1, 2, 3, 4, 5, 10, कितने, एक बड़ा सूटकेस, एक छोटा बैग, बस मैक्सिमम वही ना। थोड़ा बहुत ज्यादा लेके आते तो आराम से कंफर्टेबली रह सकते थे ना यहाँ, कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है, फ्रेश कपड़ा हर रोज पहन सकते हैं, थोड़ा बहुत ज्यादा सामान लेके आते तो कंफर्टेबली रह सकते हैं, राइट? तो फिर भी आप क्यों नहीं लेके आए एक्स्ट्रा क्यों नहीं लेके आए? केवल एक सूटकेस और एक बैग क्यों लेके आए? क्यों? जितना आवश्यकता थी तो वही चीजें डाली, एक्स्ट्रा चीजें नहीं डाली। जब आप सूटकेस भर रहे थे तो लगा कि हाँ, इस चीज के बिना मैं 3 दिन गुजारा कर सकते। जो बहुत ही आवश्यक चीजें थी इस यात्रा के लिए, 3 दिन 4 दिन के लिए जो आवश्यकता थी, वही आवश्यक चीजें उसमें डाली तो लगा कि ठीक है, इस चीज के बिना हम 4 दिन मैनेज कर लेंगे। तो उन सभी चीजों को आपने छोड़ दी। क्यों? क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा लगेज उतनी ज्यादा चिंता, परेशानी। भले फ्लाइट से तो लिमिटेड होता है वो, लेकिन अगर ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो ज्यादा जितना चाहे वो ला सकते हैं। एक सूटकेस की जगह अगर 10 सूटकेस लेके 10 पीसेस होता लगेज का तो क्या होता? क्या होता? और अगर पता चले कि रात को है ना ये ट्रेन ऐसे जगह से गुजरेगी जहां डकैती होने वाले है, तो चोर आते हैं, तो फिर रात भर नींद आएगी? रात भर हर घंटे में उठ उठ करके गिनते रहेंगे, मेरे 10 के 10 है कि नहीं है, है ना? अगर एक होता तो क्या करते? डाला बर्थ के नीचे, निश्चिंत होकर के सो गए। तो मैंने जितना ज्यादा लगेज उतनी ज्यादा चिंता, है ना? उस ट्रैवल के लिए हम इसका ध्यान रखते हैं, इस यात्रा के लिए जितना कम लगेज हो उतना अच्छा। लेकिन जीवन रूपी यात्रा में, जीवन भी एक यात्रा है, यात्रा है कि नहीं है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारी यात्रा है। इस यात्रा में आपका लगेज यहाँ कैसा है? यहाँ लगेज कैसा है? भारी है यहाँ? भारी है या है? लाइट है? 4-5 लगेज है या 8-10-15-20? यहाँ जितना ज्यादा यहाँ लगेज होगा ना, उतने ज्यादा यहाँ बर्डन होगा, है ना? भारीपन महसूस होगा। फिर कहेंगे जीवन कैसा चल रहा है, फिर क्या जवाब आएगा? हाँ कट रहा है, ठीक है, चल रहा है, उमंग उत्साह ही नहीं है, है ना? तो ऐसे पता नहीं कौन सा बोझ ढो करके चल रहे हो, है ना? तो वो आवश्यक है? ये सारे जो बोझ आप ढोकर चल रहे हैं वो आवश्यक है? आवश्यक है? तो वो सारे अनावश्यक जो लगेज है ना, उसको आज निकाल दीजिएगा। जितना आप लगेज हल्का रखेंगे, आपकी जीवन रूपी यात्रा उतना सुखद रह सकता है। और एक्स्ट्रा लगेज कौन सा है जो निकालने की जरूरत है? बुराई तो नेगेटिव है ही है, वो तो निकालना है ही है, लेकिन उसके पहले जो अनावश्यक है वो है 2 चीजें। आज वो अंडरलाइन करना है, 2 चीजें जो एक्स्ट्रा लगेज है वो है पास्ट के बारे में अनावश्यक सोचना, भूतकाल, जो भी हो चुका है उसको फुल स्टॉप लगाना, है ना? नहीं तो फिर बार बार सोचते रहेंगे, इसने है ना 15 साल उसने ऐसा बोला था, उसने है ना 5 साल पहले इसने ऐसा किया था, जितना भी मैं मदद करूं उसने ऐसा मुझे धोखा दिया था, ये किया था वो किया था, जो भी पास्ट की बातें हैं आप यहाँ ढोके चल रहे हैं, उससे किसको परेशानी हो रही है? उसको परेशानी नहीं हो रही है, जो वो जो धोखा देके तो चला गया, उसको तो परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन मैं उसको सोच सोच करके मैं परेशान हो रही हूं। वो सुखी है जीवन में, मैं परेशान हो रही हूं, है ना? तो उसको उन सारी जो चीजें हैं, जो पास्ट की बातें हैं जो परेशान कर रहा है आपको, उसको आपको निकालना है। निकालेंगे कैसे? कोई इरेजर है ऐसे अरेज कर दिया, मिटा दिया, वो मिट गया, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होगा, मिटाने के लिए, फुल स्टॉप लगाने के लिए? क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं ना, चल रहे होते तो अगर एक पैर कहीं फंसा हुआ है, कितना भी आप एनर्जी लगाएं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस पैर को आपको फ्री करना ही पड़ेगा। मैं कितना भी आगे जाने की कोशिश करूं जीवन में, लेकिन मेरी बुद्धि बार बार पास्ट में अटका हुआ है, तो कितना भी मैं कोशिश करूं मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाने नहीं देता है, क्योंकि मेरे बुद्धि रूपी पैर यहां अटका हुआ है। उसको फ्री करना होगा। फ्री करने के लिए क्या करना है, क्षमा करना होगा कि कुछ भी किया होगा, क्योंकि कर्म फिलॉसफी तो समझते हैं ना, जो भी होता है अपने जीवन में बिना कारण कुछ नहीं होता, हर एक के पीछे कारण है, वो मेरा ही कर्म है। जब इस बात को हम जब समझ जाते हैं ना, तो फिर उसको क्षमा करना सहज हो जाएगा। और क्षमा कैसे करेंगे, क्षमा कैसे करेंगे, क्षमा कैसे करेंगे, केवल बोल दिया हाँ ठीक है तुमको क्षमा कर दिया, जाओ, हो जाएगा, हो जाएगा ऐसे? मन से बोल दिया ठीक है क्षमा कर दिया तो हो जाएगा? दिल से करना होगा। और जिन व्यक्तियों को हम बहुत प्यार करते हैं उनको दिल से दुआएं देते हैं ना, फूलो फलो, आगे बढ़ो, बहुत तरक्की पाओ, सक्सेसफुल हो जाए, बहुत खुश रहो, सुखी रहो, बहुत दिल से उनको दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही जिन्होंने भी आपको दुख दिया है, क्या दिल से दुआएं दे सकते हैं उनको, दुआएं दे सकते हैं? या फिर मन में होगा इसने ना मुझे बहुत दुखी किया है, देखना एक दिन दुखी होके मरेगा, या ऐसा आएगा? ये है बद्दुआएं। बद्दुआएं क्या है, एक दिन ना देखना ये तो दुखी होके मरेगा, बद्दुआएं निकली ना, बद्दुआ जितने बद्दुआएं निकलेगी वो वापस तो मेरे पास आएगा ही, कोई ना कोई बद्दुआएं मुझे देगा जरूर, है ना? तो इसीलिए बद्दुआ को, बद्दुआ देना बहुत इजी है, गुस्से में आ गए, गुस्से में आकर के बहुत कुछ कर दिया, बोल दिया, बहुत इजी है। लेकिन आत्मा की ताकत तब है जब हम उसको नियंत्रण करके नेगेटिव बातें हुए भी मैं पॉजिटिव दूं, ये है आत्मा की शक्ति, है ना? हो पाएगा? फॉरगिवनेस एक बहुत बड़ी ताकत है, क्षमा करना बहुत बड़ी ताकत है, ये कमजोरी नहीं है, क्योंकि क्षमा करने से खुद को वो लाभ मिलेगा, दूसरों को लाभ मिले या ना मिले, खुद को लाभ मिलेगा, क्योंकि क्षमा करने से मैं यहाँ फ्री हो रही हूँ, हल्की हो रही हूँ, लाइट हो रही हूँ। तो क्षमा करना सीखे, दुआएं देना सीखे, किसने भी परेशानी की, किसने भी दुख दिया है जीवन में, तो उसको क्षमा, देखना वो बहुत बड़ी शक्ति है। धीरे 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 आप पास्ट से निकलते आएंगे। और दूसरी बात है, दूसरा एक्स्ट्रा लगेज जो हम ढोकर चल रहे हैं, और भविष्य की बात, भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता, है ना? कल क्या होगा है चिंता, है चिंता है तो सही, चिंता से क्या समस्याएं समाधान हो जाएंगी? चिंता क्यों करते हैं हम? चिंता कहां से उभरा है, कहां से उभरता है वो चिंता? चिंता उभरता है भय से, डर से, है ना? कल क्या होगा ये डर होगा, तो इसीलिए वो चिंता, वो चिंता क्यों? क्योंकि वो चिंता को हटाएंगे कैसे? क्योंकि अनिश्चितता जो है, कल क्या होगा किसी को भी पता नहीं है, क्या होगा कल किसी को भी पता नहीं है, अनिश्चितता तो है ही है, अनसर्टिनिटी तो है ही है, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। कोई भी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजिस्ट भी नहीं बता सकते कल एक्यूरेटली कितने बजे क्या होने वाला है, वेगली बताएंगे लेकिन एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता, है ना। तो वो अनसर्टेनिटी तो रहेगा, लेकिन क्या निकालना होगा, जो हम चिंता को निकाले वो भय को निकालना होगा। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे भविष्य को लेकर के, वो नेगेटिव घटनाएं घटेगी। क्यों? क्योंकि मन, हर एक के मन में एनर्जी है, जो हम सोचेंगे वैसा हम मैनिफेस्ट करना शुरू करते हैं, ऐसे उन चीजों को हम आकर्षण करना शुरू करते हैं। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी को मैं एनर्जी दे रही हूँ, नेगेटिविटी को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी को मैं एनर्जी दे रही हूँ, पॉजिटिविटी को मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, है ना। अगर मैं बार बार सोचूं, कोविड का समय चला तो कोविड के समय में मैं बार बार सोचूं मगर कोविड ना हो जाए, कोविड ना हो जाए, तो मान लीजिए अगर मैं ना, अभी ये भी तूफान आया कि हर एक मतलब बहुत कैंसर सुनने में आ रहा है लोगों को अंदर, तो ये इसको भी कैंसर हो रहा है, इसको भी कैंसर हो रहा है, तो अगर डर लगा तो मैं ये सोचूं अगर कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, क्योंकि डर के कारण से इतने सारे लोगों का मैं सुन रही हूं, तो अगर मुझे डर लगा तो क्या सोच में आएगा, क्या मन में आएगा कि मुझे कैंसर ना हो जाए, कैंसर ना हो जाए। ये जो शब्द है, ये जो सेंटेंस है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है? पॉजिटिव क्या है? कुछ नहीं होगा, स्वस्थ रहेंगे, है ना। मैं स्वस्थ हूं, स्वस्थ रहेंगे, मैं हेल्दी हूं, हेल्दी रहेंगे। तो हेल्थ के बारे में सोचते जाएंगे, हेल्दी रहूंगी इसके बारे में सोचते जाएंगे, तो मैं हेल्थ को अट्रैक्ट कर रही हूं। अगर मैं ये सोचूं कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, कहीं बीमारी ना हो जाए, ये ना हो जाए, बीमारी को मैं एनर्जी दे रही हूं, तो वहां उस चीज को मैं अट्रैक्ट कर रही हूं। किसी भी बात को लेकर के अगर आपको डर है भविष्य को लेकर के, कि बच्चों के साथ ऐसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, बुढ़ापे में ऐसा ना हो जाए, वो नहीं, कुछ नहीं, हर एक के बारे में पॉजिटिव, अच्छा है, अच्छा रहेंगे। एक तो पहला स्टेप है ये पॉजिटिव सोचना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। ये पहला स्टेप है डर को निकालने के लिए एनर्जी। और दूसरी बात है अपने आप को समझने की जरूरत है कि हर एक के अंदर शक्ति है, हर एक के अंदर शक्ति है, ऐसा नहीं है कि शक्ति नहीं है। खुद के शक्ति के कारण से मैं अच्छा कर सक, जो भी होगा वो अच्छा होगा, लेकिन जो आएगा तो मैं कर लो, सामना कर लेंगे। और तीसरी बात है परमात्मा में विश्वास रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर मैं सोचूं कि मैं आत्मा मैं कमजोर हूं, लेकिन अगर मैं परमात्मा को साथी बना के चलूं तो मेरे कंपेनियन जो है वो सर्वशक्तिमान है। अगर मुझे डर लगता है अंधेरे में अगर बाहर रास्ते रोड पे जाने के लिए, लेकिन अगर मेरे पास एक बॉडीगार्ड है, बहुत हट्टा कट्टा है, उसको जूडो कराटे सब कुछ आता है, फाइटिंग बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही तंदुरुस्त है, बहुत सक्षम है फाइटिंग में, तो अगर वो बॉडीगार्ड मेरे साथ है मैं निश्चिंत होकर के जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगेगा। क्यों? मुझे अपने बॉडीगार्ड के ऊपर विश्वास है। लेकिन यहां गड़बड़ कहां होता है, अगर कोई आकर के कहे कि ये बॉडीगार्ड है ना वो तुम्हारे दुश्मन है, एक दिन ना तुमको ही मार डालेगा, तो फिर क्या होगा? तो फिर संशय आना शुरू होगा उस बॉडीगार्ड के ऊपर, उसके कहीं भी ले जाने में मुझे डर लगेगा। परमात्मा के साथ भी ऐसा, दुश्मन नहीं है लेकिन फिर ये डाउट आएगा, क्या परमात्मा मेरी मदद करेंगे? मैं तो ठहरा बहुत साधारण, परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है तो क्या मेरी मदद वो करेंगे। जब डाउट आएगा तो मदद हम परमात्मा से नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं विश्वास में कमी आ जाता है। विश्वास में कमी आने के कारण से वो जो मदद महसूसता होगी वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए खुद में विश्वास तो है ही है, लेकिन साथ साथ परमात्मा में विश्वास लेकर के चलते हैं तो आप देखना समय पर मदद जरूर मिलेगा, तो फिर भविष्य की चिंता हमें नहीं होगी। तो भविष्य की चिंता निकालने के लिए तीन चीजें कौन कौन सी है? एक है भय को निकालना होगा। वो भय को निकालने के लिए पॉजिटिव सोचे, हर बार भविष्य के लिए पॉजिटिव सोचे। और दूसरी बात है खुद में विश्वास और परमात्मा में विश्वास। फिर देखेंगे जब पास्ट का लगेज और फ्यूचर का लगेज निकलता जाएगा और फिर आप हल्के होते जाएंगे, लाइट होते जाएंगे, फिर आपके जीवन रूपी यात्रा बहुत सुखद रहेगा। ठीक है। और तीसरी शक्ति है पावर टू टॉलरेट, या सहन करने की शक्ति। सहन करना एक कमजोरी है या शक्ति है? शक्ति है पक्का। फिर भी हम कहेंगे कितना मैं सहन करूं, मुझे सहन करना है क्या? और ये भी कहने में आता है मैं चुप रहूंगा तो फिर दूसरे दबाते जाएंगे, मुझे चुप नहीं रहना, बोलना है, है ना? दूसरे अगर सहन करे कहते कितना अच्छा है, ये बहुत शांत रहता है, बहुत शांत रहती है, बहुत सहनशील है, दूसरे सहन करेंगे तो अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी है। लेकिन खुद की बारी आती है तो कहेंगे कि नहीं, सहन करेंगे और झुकेंगे और झुकाते और दबाते जाएंगे। सही मायने से जब हम सहन शक्ति का के बारे में समझते नहीं है ना, तो फिर लगता है ये सपरेशन है। एक है सपरेशन और दूसरा है सहन करना। सहन एक नेचुरल चीज हो जाता है, सहन करने से दबाव नहीं महसूस होता है, सप्रेस करने से लगता है कि वो जैसे दबा हुआ है। जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर में प्रेशर भरते 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 अगर पूरा भर जाएगा तो क्या होगा, एक बार वो ब्लास्ट हो जाता है ना? तो अगर प्रेशर ही नहीं भरे तो, प्रेशर ही नहीं भरे तो ब्लास्ट भी नहीं होगा। अगर प्रेशर आ रहा है लेकिन फिर मैं दबाती जा रही हूं, इसका मतलब है प्रेशर हो रहा है लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूं, या फिर उसको एक चैनलाइज नहीं कर पा रही हूं, उसको ठंडा नहीं कर पा रही हूं। अगर किसने डांटा, किसने इंसल्ट किया, किसने ऐसा व्यवहार किया, अंदर तो मुझे गुस्सा आ रहा है, अंदर तो बहुत ही ये गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर रही हूं या फिर उसको एक चैनलाइज नहीं कर पा रही हूं, तो ये भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, फिर क्या होगा, एक दिन वो ब्लास्ट हो जाएगा, है ना? तो हर कई बार हम क्या करते हैं, ऑफिस का जो टेंशन है घर में आकर के उसको रिलीज करते हैं, घर का जो टेंशन है ऑफिस में जाकर के रिलीज करते, गलत जगह पर गलत व्यक्तियों के ऊपर हम गुस्सा करते हैं, रिलीज करते हैं, और फिर रिलीज तो हो गया लेकिन संबंध में तो अनबन हो ही गया ना। सहन शक्ति माना इसमें दो शब्द है, सहनशीलता, सहन करना माना बाहर से भी चुप और शीतलता, मन में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। हम सभी कभी ना कभी सहन जरूर किया है, अपनों को हम सहन कर लेते हैं। अगर बच्चा बीमार है और रात भर वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, रात भर हम जाग करके उसको देखभाल भी करेंगे, उसको परेशान भी रहेंगे और उसका सारा हम देखेंगे, और ये कभी नहीं कहेंगे कौन सी परेशानी आ गई, कभी नहीं कहेंगे, और चिंतित रहेंगे ये तंदुरुस्त हो जाए, ठीक हो जाए, बीमारी ठीक निकल जाए, तो कभी ये नहीं। सहन तो किया ना, नींद को त्याग किया ना, सारे सो सहन करते हुए सारा कुछ कर्म किया, फिर भी मुंह से गलत शब्द या फिर गुस्से वाला शब्द नहीं निकलता, सहन तो किया है। हर एक कभी ना कभी हम सहन करते ही, अपनों का सहन करना इजी हो जाता है क्योंकि वहां प्यार है, प्यार है तो इसलिए सहन कर लेते हैं। लेकिन दूसरों को सहन करना मुश्किल लगता है क्योंकि वहां प्यार की कमी है, प्यार की कमी है। तो इसलिए सहन करना है तो प्यार की शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। जहां प्यार है सहन बहुत इजी हो जाता है, सहज हो जाता है। जैसे और सहन करना क्यों है, सहन क्यों करना है, जीवन रूपी गाड़ी अगर स्मूथ चलना है ना तो सहन करना सीखना होगा। जितने ज्यादा एक्सपेंसिव गाड़ी, रोड भले कितना भी खड्डे है रोड में, लेकिन एक्सपेंसिव गाड़ी है वो स्मूथ चलती है ना। क्यों स्मूथ चलती है, क्यों स्मूथ चलती है, उसका जो शॉक अब्सॉर्बर है ना वो जबरदस्त है। भले खड्डे हैं लेकिन गाड़ी स्मूथ चलती है, लेकिन क्योंकि शॉक अब्सॉर्बर बहुत पावरफुल है ना। ऐसे ही जीवन रूपी यात्रा अगर स्मूथ चलना है ना, हमारा शॉक अब्सॉर्बर पावरफुल होना चाहिए। और शॉक अब्सॉर्बर अपना कौन सा है, शॉक अब्सॉर्बर अपना कौन सा है ना? सहन करने की शक्ति। अगर कमजोर है, थोड़ा खड्डा आया जीवन रूपी गाड़ी, फिर ऊपर नीचे होना शुरू होता है। अगर जीवन रूपी गाड़ी स्मूथ चलना है, सहन करने की शक्ति। इसलिए किसने कहा, शक्तिशाली आत्मा ही सहन कर सकती है। और जितना हम सहन करते जाएंगे आत्मा के अंदर ताकत बढ़ती जाएगी। लेकिन यहां एक और शक्ति है, सामना करने की शक्ति। दोनों शक्ति, अष्ट शक्तियों में सहन करना भी एक शक्ति है और जस्ट अपोजिट जो शक्ति है वो है सामना करने की शक्ति, है ना। सामना करने की शक्ति, हाँ वो वहां जाऊंगी, पहले ये पूरा कर लो क्योंकि कनेक्टेड है। सहन करने वाले में पिक्चर का, हाँ इमेज की विशेषता क्या, इसका वर्णन करना है। हाँ जितना हम, क्योंकि जैसे वो हथौड़े, वो पत्थर है, पत्थर मूर्ति कब बनेगा, हथौड़े जब सहन करता है वो पत्थर, तभी तो वो मूर्ति बनता है ना। हथौड़े अगर पत्थर कहे वो मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है वो हो रहा है, मुझे हथौड़े नहीं मारो, तो मूर्ति तो नहीं बन सकता। अगर आपको मूर्ति बनना है, कहेंगे मुझे मूर्ति नहीं बनना है, पत्थर ही पत्थर रहने दो, ठीक है कोई पूजा नहीं करे तो भी चलेगा। लेकिन जीवन को अगर सुंदर बनाना हो तो सहन करना सीखना होगा। पत्थर तो कैसा होता है, सुंदर नहीं होता है ना, देख करके कोई कोई भी लगता नहीं है कि वो पत्थर उठाए, है ना। अगर मूर्ति बनते चलो पूजा नहीं करे, लेकिन एटलीस्ट शोकेस के रूप में, घर में श्रृंगार डेकोरेटिव पीस के रूप में तो रख सकते हैं। तभी जितना हम सहन करते जाएंगे उतना हम मूर्ति बनते जाएंगे, सुंदर बनते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। इसके कनेक्टेड जो जस्ट अपोजिट जो शक्ति है, सामना करने की शक्ति। आप जब फौज, आप सभी फौज से हैं, डिफेंस में, और कहें कि अगर एनिमी अटैक कर रहा है तो हम सहन करते बैठे, तो वहां हमें डिसाइड करना है कौन सी बातों को मुझे सहन करना है और कौन सी बातों को मुझे सामना करना है, है ना। जो ना जो इलीगल बातें है या फिर ऐसे परेशानी करे तो उसको तो हमें सामना करना ही है, उसको फिर हमें उस रीति से एक्शन लेना होगा। यहां एक बात को समझना बहुत जरूरी है कि किन बातों को हमें सामना करना है और किन बातों को हमें सहन करना है ना। पापी से मुझे नफरत नहीं है, पाप से नफरत है, है ना? जो पाप कर रहा है वो पापी आत्मा है, जो पाप कर रहे उससे नफरत नहीं है, लेकिन वो जो पाप कर्म कर रहा है उससे नफरत है। जब भी हमने वो जवाब दिया युद्ध में, जिन्होंने वो कर्म किया है उनको जवाब दिया, लेकिन सिविलियंस को जवाब नहीं दिया। भले वो कंट्री वाले हैं लेकिन सिविलियंस तो इनोसेंट है, है ना? जो पाप कर्म कर रहा है उससे नफरत है, वो जो पापी आत्मा है उनसे नहीं है। उसको बात तो जब समझेंगे तो उसको फिर यथार्थ हम कर्म करते हुए उसको हम सामना कर सकते। वो रही बात देश और ये सारे युद्ध की बात, लेकिन जीवन में, पर्सनल लाइफ में कौन सी बातों को मुझे सहन करना है, कौन सी बातों को सामना करना है, कौन सा एक मार्जिन है पर्सनल लाइफ में, ठीक है यहां तक ही मैं सहन कर सकती हूं, इसके बाद मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, कैसे वो मार्जिन लगाए, कैसे वो ये लगाए, बस इतना ही है। दो शक्तियां हैं, एक है सहन करने की शक्ति, एक है सामना करने की शक्ति। सहन करना माना वो कुछ हो रहा है लेकिन फिर मैं चुप हूं, उसको सहन कर रही हूं, ठीक है प्यार है तो इसीलिए मैं, ठीक है उसको चुप रह करके मैं उसको ग्रहण कर। लेकिन सामना करना, जो अगर कोई कुछ गलत कर रहा है मैं उसको सामना कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, उसको जवाब दे रही हूँ उसको, या कर्म उस रीति से मैं एक्शन ले रही हूँ। कौन सी बातों को मुझे एक्शन लेना है, कौन सी बातों को मुझे सहन करना है, नहीं कौन सी बातें हैं, कौन सा लाइन लगाए, वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो कौन सा एक एक माइन्यूट लाइन है, तीन लाइन है, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, इलीगल बातों को हमें फेस करना है, और जो पारिवारिक बातें हैं, जहां तक प्यार है लगता है कि ये इलीगल नहीं है, लेकिन फिर तो कुछ व्यवहार ऐसा होता है जो तो दुख मिलता है ना? तो भले हम सहन कर रहे हैं, लेकिन सहन करते करते भी हम ये बिल्कुल चुप ना रहे हैं, लेकिन कहीं कभी कभी हम व्यक्त करना भी जरूरी होता है हमारा, क्योंकि अगर वो कुछ गलत शब्द बोला, मुझे दुख लग, दुखी हुई मैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि मैं दुखी हुई हूं, पता ही नहीं जब दुखी हुई हूं तो बार बार उन्हीं शब्दों का उपयोग वो करना शुरू करेगा, वो वही व्यवहार करना शुरू। लेकिन प्यार से उसको बिठा करके कहे, देखो ऐसा आप व्यवहार करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे दुखी होती हूं मैं, या कुछ अपने फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस करती हूँ, जो वो उसको फिर समझ में आता है। तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, मेरे मन में क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स है, तो वो व्यक्त करना बहुत जरूरी, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है सहन करते समय भी। अगर हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो हम दबते जाएंगे, जैसे सप्रेस करते जाएंगे तो एक दिन फिर ब्लास्ट हो जाएंगे। और सामना करना, और कई मिल, जैसे ये जो व्यक्ति है सर्फिंग कर रहा है सागर में और एंजॉय भी कर रहा है, और उसको स्किल पता है इसलिए वो एंजॉय कर रहा है, अगर उसको स्किल पता नहीं है तो वो डूब जाएगा, है ना? लाइफ में भी ऐसा है, अगर मुझे पता है कैसे सर्व करना है, कैसे मुझे जाना है, नेविगेट करना है, भले वो बहुत बड़ा तूफान है, देखो ये बहुत बड़ा वेव है, अगर वो सर्व करना नहीं आता है तो वो तो उस वेव उसके अंदर चला जाए, है ना? हमें भी जब हमें पता है कि कैसे उसको पार करना है, वो स्किल जब पता है तो सर्फिंग करना या फिर सामना करना ईजी हो जाता है। तो सामना करने के लिए हिम्मत की जरूरत होता है, यहां हिम्मत भी जरूरत है सर्फिंग करने के लिए, एक है स्किल और दूसरी बात है हिम्मत। तो जब हिम्मत है तो फिर हम सब कुछ सामना कर सकते हैं। तो हिम्मत, जैसे मैंने कहा पहले, हिम्मत कहां से आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और परमात्मा में जब विश्वास रखेंगे तो विश्वास, ये हिम्मत जरूर आएगा। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू एडजस्ट. जीवन में अगर ये कहे इसके साथ मैं एडजस्ट नहीं कर सकती, इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती, इसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकती हूं, तो किसके साथ रहेंगे, किसके साथ रहेंगे, है ना. तो आजकल देखते हैं हमारा एडजस्टिंग पावर कम होता हुआ नजर आता है, समाने की शक्ति कम होता हुआ नजर आ रहा है. 20 साल पहले, 25 साल पहले या 50 साल पहले कंबाइंड फैमिलीज में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, जॉइंट फैमिलीज में रहते हुए भी बहुत अच्छा रहते थे. लेकिन अभी कैप्सूल फैमिलीज है, फैमिली में 4 लोग है, 3 लोग है, फिर भी अलग अलग कमरे चाहिए, अलग अलग, एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं. क्यों? कि कहीं ना कहीं आत्मा में वो शक्ति कम होता हुआ नजर आ रहा है. जैसे ये सागर है, सागर में बहुत सारे पानी, किचड़े का पानी ना, जैसे शहर के सारे किचड़े का पानी भी जाता है, सब कुछ जाता है, लेकिन सागर क्या करता है, सारा किचड़ा बाहर फेंक देता है और केवल शुद्ध पानी लेता है. और सागर के तले में जाते हैं ना, एकदम नीचे, वहां डायमंड्स और पर्ल्स सब कुछ मिलते हैं, है ना. और सागर के अंदर जाते हैं शुद्ध पानी होता है, सारा किचड़ा जो है बाहर जैसे इसके किनारे मिलता है, सब फेंक देता है. तो ऐसे ही सबको, सभी से मिलते हुए, सभी लोगों से मिलते हुए उनके अंदर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है, है ना. नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है. लेकिन केवल मैं नेगेटिव एनर्जी लेती जाऊं, केवल अवगुणों को देखती जाऊं, तो क्या होगा, मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हूं. नेगेटिविटी को निकाल दें मन से, उनको इग्नोर करते हो, जितना हम पॉजिटिविटी को लेते जाएं, पॉजिटिविटी को लेके लेके जाएं, या हम पॉजिटिव एनर्जी हम बढ़ते जाएंगे और फिर हम अपना संबंध एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रख सकते हैं. और जीवन की वास्तविकता ये है कि संसार में कोई भी 100% पॉजिटिव गुण वाला नहीं है. ऐसा कोई है 100% गुण वाला व्यक्ति? कोई है? कोई भी नहीं है, खुद भी नहीं है. हम अपने आप को देखेंगे तो भी लगता है कि मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूं, हर एक को महसूस होता है, है ना. और दूसरी वास्तविकता ये है कि इस संसार में कोई भी 100% अवगुण वाला व्यक्ति नहीं, एकदम बुरा व्यक्ति जिसके अंदर 1% भी गुण ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति है? कोई नहीं. टेररिस्ट भी होंगे लेकिन उनके अंदर कोई डिसिप्लिन होगा या कुछ हिम्मत होगा, कुछ तो पॉजिटिविटी है, लेकिन पॉजिटिविटी को गलत कर्मों में यूज कर रहे हैं बस. लेकिन उनके अंदर भी तो पॉजिटिविटी है कुछ ना कुछ, है ना. तो हर व्यक्ति के अंदर गुण भी है और अवगुण भी है. परसेंटेज वेरी होगा, कोई 30-70% है, 40-60% है, 50-50%, परसेंटेज वेरी होता है. हर एक के अंदर गुण और अवगुण दोनों हैं. जब गुण अवगुण दोनों हैं, क्यों ना हम केवल गुणों को चुगते जाएं? गुणों को चुगते जाएंगे तो यहां मैं गुणों का भंडार हो जाऊंगी, क्योंकि मैं केवल गुणों को देख रही हूं, गुणों को चुग रही हूं. और केवल अवगुणों को चुगूंगी तो क्या होगा, इसके अंदर ये नेगेटिविटी, ये अवगुण है, ये वीकनेस है, ये है, ये है, ये, तो फिर यहां सारा बदबू, फिर मेरा व्यवहार, मेरे बोल सारा नेगेटिव हो जाएगा. क्योंकि यहां जब नेगेटिव है तो मेरा व्यवहार, बोल, सब कुछ नेगेटिव होना शुरू होगा. तो इसीलिए पॉजिटिविटी को ले और नेगेटिविटी को इग्नोर करना शुरू करें. अगर कोई नेगेटिविटी दिखाई देगा तो क्या करना है, दिख जाता है ना, दुख जाता है, दिख जाता है, तो क्या करें? कोई गुस्सा कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई ऐसा व्यवहार कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, कोई चीट कर रहा है, कोई दिख रहा है, दिख जाता है, अवगुण तो अवगुण है, तो हम क्या करें उस समय? पॉजिटिविटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे?
अच्छा क्या करना है? पॉजिटिविटी को नोट करना, ये याद रखना कि भले उसको अवगुण एक नजर आ रहा है, उसको हम इग्नोर मतलब इस नकार तो नहीं सकते, अवगुण तो है ही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर गुण भी तो है, गुण भी तो है। एक अवगुण दिखे ना, दस गुणों को गिनना, देखना आपके जो अवगुण दिखाई दे रहा है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो फिर उसके प्रति मेरी जो भावना है वो नेगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी डाइल्यूट हो गया, क्योंकि उसको ज्यादा मैं एनर्जी दे नहीं रही हूं, है ना। एक अवगुण दिखा, उसके बजाय मैं क्या देखूं, उसके तुलना में, उसके अगेंस्ट में 5 या 10 गुणों को देखूं, ये दिखेगा कि ये चीट कर रहा है, ये तो धोखा दे रहा है, लेकिन फिर गुणों को देखना शुरू करो, ये तो बहुत डिसिप्लिन वाला है, बहुत मेहनती वाला है, बहुत ये वाला है, ये वाला है, तो जब गुणों को देखूं ये फिर डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। हाँ, कॉन्फ्रंट कर सकते हैं, अगर उसको सामने जाकर के बोल सके तो अच्छा है, लेकिन कई बार हम बोल नहीं सकते हैं कि देखो ये अवगुण है तुम्हारे में, बोलने का समय नहीं है अभी, राइट। तो उसके बजाय अपने को ही पॉजिटिव बनाते चले, अपने को ही शक्तिशाली बनाते चले। तो यहाँ एक बात हम कहते हैं, अगर करेक्ट भी करना है किसी को भी शिक्षाएं भी देनी है, तो एकदम हम कहेंगे ना, तुम ना ऐसे करते हो, वैसे करते हो, नेगेटिविटी को बोलते जाएंगे ना, तुम गुस्सा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उस आत्मा के अंदर वो ताकत नहीं है उसको लेने की, दिल शिकस्त हो जाएगा और फिर अच्छा कर्म करने के लिए वो हिम्मत नहीं आएगा, उसके अंदर ताकत नहीं रहेगी। तो हम हमेशा यहाँ कहते हैं, परमात्मा भी यही कहते हैं, पहले उसको अपने हिम्मत दिलाओ, अपने जो स्वमान को जागृत करो, देखो आप इतने अच्छे कर्म कर रहे हो, ये अच्छा कर्म ये करते हो, मतलब ऐसा नहीं कि वेगली बहुत हवा में फेंकने वाली बातें, नहीं, पर्टिकुलरली देखो परसों तुमने अच्छा काम किया था ना, ये अच्छी बातें गिना करके देखो, तुम्हारे अंदर ये अच्छी बातें, ये अच्छी बातें, ये अच्छी बातें, ये अच्छी बातें, बहुत सारी अच्छी बातें हैं तुम्हारे अंदर, लेकिन ये जो छोटी सी जो नेगेटिविटी है ना, इसको आप निकालोगे ना और अच्छे हो जाओगे आप, तो फिर उसके अंदर हिम्मत आता है, मैं तो हूं ही अच्छा, लेकिन ठीक है ये छोटी सी बात गलत है मेरे अंदर, उसको निकालने से मैं और अच्छा हो सकता हूं, है ना। रोज जो मुरली हम यहां सुनते हैं उसमें परमात्मा यही कहते हैं, हे बच्चे आप इतने अच्छे हो, बहुत महान हो, आपके अंदर ये शक्ति है, ये गुण है, लेकिन देह भान को निकालो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को निकालो, ये निकालो वो निकालो, तो फिर अपने आप को चेक कर, हाँ मैं स्वमान तो हूं, है मैं बहुत महान आत्मा हूं, लेकिन मेरे अंदर ये कमी है, मैं उसको निकाल सकती हूँ, फिर परमात्मा की मदद तो है ही है कमी कमजोरियों को निकालने के लिए, है ना। ऐसे ही जब एडजस्ट करने की बात आती है, हर एक के अंदर गुणों को देखते जाएंगे तो फिर एडजस्ट करना इजी हो जाएगा। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू डिसर्न या परखने की शक्ति। सहन करना अच्छा है, एडजस्ट करना अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन परखना भी चाहिए, क्योंकि सॉफ्ट पावर्स और हार्ड पावर्स कहा जाता है, या एडजस्ट करना, टॉलरेट करना, ये सब सॉफ्ट पावर्स है, ये है डिसर्न करना या परखना हार्ड पावर है, क्योंकि एक बार मैंने अगर किसी व्यक्ति से धोखा खाया तो मेरी गलती नहीं थी क्योंकि मैंने उस पर विश्वास किया था, लेकिन दूसरे बार उसी व्यक्ति से मैं धोखा खाऊं तो किसकी गलती है, मेरी ही गलती है, और तीसरी बार उसी व्यक्ति से मैं धोखा खाऊं तो मुझे क्या कहा जाएगा, मूर्ख कहा जाएगा, है ना। क्योंकि बार बार मुझे वो सिग्नल मिल रहा है, बार बार मैं धोखा खा रही हूँ, बार बार मैं विश्वास कर रही हूँ, बार बार तीसरे बार चौथे बार 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 धोखा, तो मूर्खता है ना। तो परखने की शक्ति बहुत जरूरी है। दो चीजों को हम परखते हैं, एक है व्यक्ति व्यक्ति को परखते हैं और दूसरा है परिस्थिति को परखते हैं, है ना। व्यक्ति को कितने हद तक मैं विश्वास रख कर सकती हूँ उसके ऊपर, है ना, और फिर इस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, कौन सी शक्ति को यूज करो, सहन शक्ति को यूज करो या फिर सामना करने की शक्ति को यूज करो, इस प्रॉब्लम को कैसे मैं सॉल्व करूं, ये है परखने की शक्ति। और ये परखने की शक्ति को कैसे हम बढ़ाएं, जैसे यहां एक डायमंड को परखने के लिए लेंस रखा गया है, लेंस के थ्रू पता चल रहा है उसकी प्यूरिटी, उसकी शुद्धता कितना है उस डायमंड में। और सोने को भी परखने के लिए कसौटी, एक पत्थर पर घिसना होता है, घिसते तो पता चलता है कि वो कितने कैरेट का गोल्ड है, है ना। ये जो लेंस है या फिर पत्थर जो यूज करते हैं, वो फिर अपने जीवन के लिए वो कसौटी क्या है जिसके आधार से मैं परख सकती हूं किसी व्यक्ति को, वो कसौटी अपनी बुद्धि, बुद्धि को जितना हम शुद्ध करते जाएंगे, जितना बुद्धि जितना शुद्ध है उतना मैं अच्छी तरह व्यक्ति को परख सकती हूँ, है ना। वो बुद्धि को कहा जाता है, बुद्धि को कहा जाता है तीसरी आंख, तीसरी आंख। जितना मेडिटेशन करते हुए वो बुद्धि को हम साफ करते जाएंगे, क्योंकि एनालिटिकल शक्ति है, लॉजिकल पावर है बुद्धि के अंदर। तो मन और बुद्धि दोनों शुद्ध होता जाएगा मेडिटेशन करने से, मन क्लीन और बुद्धि क्लियर होता जाएगा, तो फिर परखने की शक्ति बढ़ता जाएगा। और परखने की शक्ति जितना बढ़ता जाएगा, जैसे तीन लेवल्स हैं, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम, और विजडम बढ़ता जाएगा बुद्धि के अंदर तो परखने की शक्ति बढ़। इंफॉर्मेशन जो हमारे सूचना मिलती है आसपास के मीडिया से, लोगों से जो सूचना है, इंफॉर्मेशन मिलता है, बचपन से हम ग्रहण करता शुरू करते हैं, उसके आधार से हमारे परखने की शक्ति या निर्णय करने की शक्ति एक चैनलाइज हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट लेवल है इंफॉर्मेशन के, नेक्स्ट लेवल है नॉलेज, ज्ञान। तो ज्ञान में जितनी शक्ति है ना, वो इंफॉर्मेशन में नहीं है। वो इंफॉर्मेशन ज्ञान में कैसे परिवर्तन होगा, अगर मान लीजिए आपको एक इंफॉर्मेशन मिला, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरी चीज है, एक लाइन का इंफॉर्मेशन है, तो वो ज्ञान में कैसे परिवर्तन होगा, वो ज्ञान नहीं है, केवल इंफॉर्मेशन है, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध बुरी चीज है, इंफॉर्मेशन में समझ नहीं है, केवल किसी ने, बड़े बुजुर्गों ने कहा बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन वह समझ नहीं है क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से हानि क्या होगा, क्रोध न करने से लाभ क्या मिलने वाला है, उसकी समझ नहीं है। इसके कारण से क्या होगा, जब तक वो व्यक्ति मेरे सामने है तब तक मैं क्रोध नहीं करूंगी, वो व्यक्ति निकलने के बाद तुरंत मैं क्रोध करना शुरू करूंगी, केवल इंफॉर्मेशन है, वह ताकत नहीं है, समझ नहीं है। लेकिन जैसे ही इंफॉर्मेशन प्लस समझ, इन्फॉर्मेशन जब मैं अच्छी तरह समझ गई क्यों नहीं क्या है ये सब कुछ समझ में आया, तो फिर वो ज्ञान बना। नॉलेज इज इक्वल टू इन्फॉर्मेशन प्लस अंडरस्टैंडिंग, है ना। तो समझ बना तो फिर कोई हो या ना हो मैं क्रोध नहीं करूं, समझ तो है, क्रोध करूं या ना करूं वो समझ है, क्रोध नहीं करना चाहिए, है ना, वो समझ है, तो वो ताकत है। तो इसलिए ज्ञान को कहा जाता है रोशनी, क्लैरिटी मिलती है, रोशनी में क्या क्लैरिटी है, इंफॉर्मेशन में क्लैरिटी नहीं है, है ना। तो फिर वो इंफॉर्मेशन विजडम में कैसे परिवर्तन होगा, प्रज्ञा, ज्ञान प्रज्ञा में कैसे परिवर्तन होगा, जब अंदर ताकत बन जाएगा। जैसे अंडरस्टैंडिंग तो है क्रोध क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है क्रोध न करने की, समझ है लेकिन कंट्रोलिंग पावर नहीं है। किसने कुछ बोल दिया, किसने कुछ कर दिया, तो फटक से मुझे गुस्सा आ गया, तो मैं कर्म करना, उस रीति से रिएक्ट करना शुरू कर दिया, वो ताकत नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना होगा, जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उस नॉलेज को, ज्ञान को जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो फिर वो प्रज्ञा में परिवर्तन होगा। समझ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, वो प्रैक्टिस करते गए करते गए करते गए, तो फिर वो नेचुरल नेचर बन गया शांति मेरा, है ना। वो है विजडम, है ना, ज्ञान प्लस प्रैक्टिस, वो अनुभव होता गया फिर वो। तो जितना हम प्रैक्टिस करते जाएंगे या फिर अनुभव करते जाएंगे, विजडम बढ़ता जाएगा, तो फिर हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट है निर्णय करने की शक्ति, है? परखने के आधार से हम निर्णय करते हैं। निर्णय करने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। हर रोज सुबह से हम निर्णय करना शुरू कर दे, छोटे मोटे, उस सुबह उठते ही क्या नाश्ता खाना है, क्या ड्रेस पहनना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है, छोटे 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 डिसीशंस हम सुबह उठते ही करना शुरू करते हैं। लेकिन बड़े बड़े डिसीशंस जो लाइफ के, वो लाइफ चेंजिंग डिसीशंस हो जाते हैं। छोटे छोटे डिसीशन से कोई गलती भी हो जाए, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आज नाश्ते में पोहे के बजाय मैं उपमा खा लिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं सफेद कपड़े के बजाय मैं काला कपड़ा पहन लूं, तो क्या फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। छोटे छोटे डिसीशंस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेजर डिसीशंस में लाइफ के, उसको थोड़ा सोच समझ करके निर्णय लेना बहुत जरूरी है। उस समय हमें कैसे निर्णय लेना है, जैसे ये चित्र देख रहे हैं, ये न्याय की देवी का चित्र है। न्याय की देवी के एक हाथ में तराजू है और दूसरे हाथ में तलवार है। तराजू किसका प्रतीक है? तराजू है अनबायस्ड डिसीशंस, कोई की तरफदारी नहीं, अनबायस्ड, है ना, कोई तरफदारी नहीं, अनबायस्ड डिसीशन, बैलेंस्ड डिसीशन, कोई ऐसे एक व्यक्ति के प्रति फेवरिज्म नहीं, है ना। अनबायस्ड डिसीशन है तराजू, और तलवार ज्ञान की बात है। तलवार को ज्ञान भी कहा जाता है, ज्ञान को तलवार के साथ कनेक्ट किया जाता है, है ना। जब हमें ज्ञान है तो फिर उसको काटना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अगर मुझे गलत लग रहा है, कोई गलत चीज है, उसको काटना बहुत जरूरी है। अगर उसको नहीं काटेंगे और बढ़ सकता है। जैसे अगर मैंने डायबिटीज है, अगर कुछ गैंग्रेन हो गया पैर में, अगर मैं पैर को नहीं काटूं, अगर मुझे अटैचमेंट है, मैं कैसे पैर को काटूं, मैं चलूंगी कैसे, अगर अटैचमेंट है, डर है, बहुत सारी बातें हैं, तो मैं अगर पैर को नहीं काटूं, तो फिर धीरे 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 शरीर पूरा खत्म हो जाएगा। अगर वहां काटना इस मतलब राइट चीज है, अगर मुझे जीना है वहां काटना जरूरी है। ऐसे ही जीवन में भी बहुत सारे ऐसे गलत चीजें होती है, उस जिसके साथ अटैचमेंट होता है, उसको काटना बहुत मुश्किल लगता है। जीवन से अलग करना, अपने से अलग करना बहुत मतलब डिफिकल्ट लगता है, बहुत ये बहुत ताकत की जरूरत होती है। तो वहां एक टुक होकर के जैसे मैं काट सकती हूँ, उसको अपने से अलग कर सकती हूँ, वो है तलवार, राइट डिसीशन, है ना। वहां डिटैचमेंट की जरूरत है, अटैचमेंट से काम करेंगे तो फिर राइट डिसीशंस हम नहीं ले पाएंगे। और न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी क्यों है? राइट डिसीशंस लेने के लिए आंखों पर पट्टी बांधना जरूरी है, पार्शियलिटी ना हो, अगर आंखों पर पट्टी बांधने से पार्शियलिटी नहीं होती तो महाभारत महाभारत नहीं होता, राइट? तो आंखों पर पहले पट्टी बांधी उन्होंने, लेकिन फिर पुत्र मोहवश उन्होंने गलत डिसीजन ही लिया हमेशा, है ना? तो आंखों पर पट्टी का मतलब ये नहीं है कि मुझे देखना नहीं है, देखना जरूरी है, देखना जरूरी है, क्योंकि अगर मुझे कुछ लेना है, अब काला है पीला है कि क्या है, कौन सा कलर है, क्यों, देख करके ही लेंगे ना, तो डिसीजन लेने के लिए देखना जरूरी है। लेकिन आंखों पर पट्टी माना जो दिखता है वो 100% सच नहीं होता कई बार, उस किसी लिए थोड़ा बहुत धीरज धर करके उसको अच्छी तरह एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा ना कि आपस में कुछ लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं वहां जाऊं तो बात करना बंद कर लेंगे, वो डाउट लगेगा कि शायद मेरे बारे में वो बात कर रहे होंगे, उसके आधार से मैं बहुत इमेजिन करूंगी इस क्या बात कर रहे होंगे, ये बात कर रहे होंगे, वो बात कर रहे होंगे, ये बहुत सारे मैं हवा महल बनाऊंगी, बहुत सारी बातें हवा महल ही बहुत है, वो कुछ कारण से वो बंद किया होगा, बस कुछ बातों को देख करके मैं हवा महल खड़ी कर देती हूँ, है ना? छोटे पद में एक कहानी आप सभी ने सुनी होगी, एक जंगल में एक परिवार बसा था और हस्बैंड वाइफ एक छोटा सा बच्चा। हस्बैंड हर रोज सुबह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाते थे और वाइफ वहां बच्चे के साथ रहते थे। एक दिन वो वाइफ पानी भरने के लिए कुएं के पास गई और वापस आते समय उसने घर के चौखट पर उसने देखा एक मंगूस, मंगूस पाल के रखा था उनके घर में, मंगूस था, नेवला था। तो वो नेवले के मुंह पर खून के धब्बे थे, उन खून के धब्बे देख करके उसको बहुत गुस्सा आया, उसने मेरे बच्चे को मार दिया। वो घड़ा जो था पानी का घड़ा उसके ऊपर मारा और भाग करके देखा, जाकर अंदर जाकर के देखा तो क्या देखा, सांप मरा था और बच्चे तो आराम से वो खेल रहा था। फिर बाद में अफसोस हुआ, अरे खून के धब्बे को देख करके उसको क्या लगा, हवा महल खड़ा किया ना तो उसने, अरे उसने मेरे बच्चे को मार दिया। उस महिला, अगर उसके अंदर थोड़ा सा धीरज होता, थोड़ा सा पेशेंस रख करके अंदर जाकर के देखती एक्चुअली क्या हुआ है, तो फिर वो नेवले को मारने की जरूरत ही नहीं थी, है ना? बाद में उसको अफसोस हुआ, अरे मैंने गलती कर ली, है ना? कई बार अपने जीवन में भी ऐसा होता है, कुछ देख लिया, हवा महल खड़ा कर दिया, इस क्यों किया उसने ऐसा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, सोच करके इमेजिन करके निर्णय भी ले लिया, डिसीशन भी ले लिया, डिसीशन लेकर के कर्म भी कर लिया। उस महिला ने ना हवा महल खड़ा किया, निर्णय ले लिया, निर्णय लेकर के कर्म भी कर लिया, नेवले को मार दिया कर्म, तो ना मार करके जब जाकर के देखा गलती महसूस। कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा अगर वो महिला धीरज धरती ना तो फिर वो गलती नहीं होती। इसीलिए आंखों पर पट्टी माना, जो इन आंखों से दिखता है उस पर 100% विश्वास नहीं करना है। थोड़ा सा धीरज धर के एनालाइज करके सच क्या है उसको अच्छी तरह देख करके फिर निर्णय लेना है, है ना? तब हमारा जो डिसीजंस है वो एक्यूरेट हो सकता है। और फिर लास्ट शक्ति है, आठवीं शक्ति, पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। जीवन में सहयोग तो चाहिए, हेल्प तो चाहिए हर एक से, है ना? ऐसा नहीं कि मैं हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, नहीं, हर एक से मुझे सहयोग की जरूरत होती है। और सहयोग कैसे मिलेगा, मांगने से मिलेगा, भाई थोड़ा मदद कर लो, हेल्प कर लो, थोड़ा मदद कर लो, मदद मिलेगा, मदद मांगने से थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन फिर लंबे काल के लिए वो नहीं मिलेगा। है ना, लंबे काल के लिए क्या हो करना होगा, मुझे मदद करनी होगी, जितना मैं मदद करती जाऊंगी, जितना मैं देती जाऊंगी उतना मुझे मिलता जाएगा, मांगने से नहीं मिलेगा, है ना, जितना मैं देती जाऊंगी उतना हमें मिलेगा। लेकिन कई बार हम देते जरूर है लेकिन एक इस पर के बाद देखते इससे कुछ मिल नहीं रहा है, तो जब मिल नहीं रहा है तो मैं क्यों दूं, वो बंद कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है तो कई बार फ्रेंड्स के साथ आउट ऑफ द वे जाकर के भी हम मदद कर लेते हैं, फाइनेंशियली सब कुछ मदद कर लिया, लेकिन दो साल के बाद जब मुझे आवश्यकता होती है मदद की तो सबसे पहले किसकी याद आएगी, किसकी याद आएगी, उसी की याद आएगी जिसको मैंने मदद की थी, है ना। अगर उसके पास जाकर के पूछा भाई थोड़ा मदद की जरूरत है, ये कर लो वो कर लो, कारणवश कुछ मना कर दिया उसने, तो क्या होगा, बहुत गुस्सा आएगा, देखा मैं आउट ऑफ द वे जाकर के भी उसको मदद की, इतना मदद किया, उसको कोई ये नहीं है, एहसास नहीं है, कोई कदर नहीं है मेरी, बहुत गुस्सा आएगा। फिर बाद में मैं डिसीजन लूंगी कि ये दुनिया ही सेल्फिश है, स्वार्थी है, मुझे किसी को भी मदद नहीं करना है, ये डिसीजन राइट है, डिसीजन राइट है, नहीं, जितना मैं देती जाऊंगी वो मिलता जाएगा। लेकिन अब कंडीशन क्या रखते हैं, कंडीशन क्या रखते हैं, जिसको मैंने दी उसी से चाहिए, ये कंडीशन रख दिया ना मैंने, तो वो नहीं मिलने वाला है। कर्मों की गति क्या कहता है, जो आपने दी है वो वापस आएगा, वो जो आपने दी है वो लौट करके वापस आपके पास आएगा। अच्छी बात, अच्छी चीजें दी, अच्छी बातें आएगी, नेगेटिव दिया है नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव दिया है तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन हमने यहां क्या किया, जिस व्यक्ति को दिया है ना उसी से चाहिए, एक कंडीशन रख दी। तो इस कंडीशन को अगर निकाल दे तो क्या होगा, इस कंडीशन को निकाल दे, देते जाए मदद किसी भी रूप से, स्माइल करना भी एक सहयोग देना है ना, देना है, पॉजिटिव एनर्जी देना है, देते जाएंगे जब मुझे आवश्यकता होगी वो कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल ही जाएगा। ये कंडीशन नहीं, उसी व्यक्ति से नहीं, उस व्यक्ति से मिले या ना मिले लेकिन मेरी आवश्यकता के समय वो जरूर मिलेगा, है ना। जब ये कंडीशन रखते हैं तो हम सहयोग देते जाएंगे और हमें मिलता जाएगा, हम भरपूर होते जाएंगे। ये है अष्ट शक्तियां जीवन के, जो ये अष्ट शक्तियां जब हम जितना प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम कर्मों में ले आते जाएंगे, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी। जैसे डायमंड है, संसार में बहुत हार्ड स्टोन कहा जाता है डायमंड को, है ना, डायमंड से हार्ड कोई और चीज है ही नहीं। डायमंड पहले पत्थर जैसा दिखता है लेकिन उसी को थोड़े से एंगल से काट करके थोड़ा तराश लेते हैं ना, उसकी जो चमक है वो बहुत सुंदर होता है, है ना। उसके डायमंड के अंदर दो क्वालिटीज है, एक है बहुत शक्तिशाली, बहुत हार्ड है, और दूसरी है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है, उसकी चमक जो है बहुत सुंदर है ना, ऐसे ही। और तीसरी भी बात है, तीसरी विशेषता क्या है डायमंड की, बहुत एक्सपेंसिव है, डायमंड बहुत एक्सपेंसिव है ना, बहुत कॉस्टली है, बहुत वैल्यूबल है, ऐसे ही आत्मा भी शक्तिशाली है और बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत वैल्यूबल है। लेकिन केवल हमें क्या करना है, इस आत्मा रूपी डायमंड को क्या करना है, चमक क्यों कम हो गया है, इस चमक को बढ़ाना है। अभी केवल उसको तराशने की जरूरत है, सब कुछ है अंदर, आत्मा के अंदर सब कुछ क्वालिटीज है, शक्तियां हैं, केवल तराशने की जरूरत है, परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ते हुए हम उस आत्मा को जब तराशते हैं आप देखेंगे आत्मा की जो शक्तियां हैं, स्पार्कल है, उसकी जो चमक है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओम शांति।